थे, खासतौर पे जो लोग 60 एंड अबव थे या बच्चे थे उनके लिए, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स भरे हुए थे इलनेसेस से, जिसके के अंदर बहुत सारी जो हैं सांस की बीमारियां थी और प्रॉब्लम्स थे, और सीनियर्स को जो है खास तौर पे बहुत ज्यादा जो खतरा हो गया था। तो वो कहते हैं कि इस दफा सीनियर्स को जो अबव 60 हैं या जिनकी अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस हैं, उनको शायद इतना सीरियसली ये वाला विंटर जो है वो नहीं अफेक्ट करेगा। लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं कि जो बहुत सारी बीमारियां जैसे कि COVID-19, इन्फ्लुएंजा, बैक्टीरियल निमोनिया, RSV आपको जो है फिर से भी हो सकते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारी जो दवाइयां हैं वो तो फ्री आपको अंडर ओहिप मिल सकती हैं, जैसे कि आपको वैक्सीन जो हैं COVID-19, इन्फ्लुएंजा और RSV के तो मिल सकते हैं ऑन ओहिप, यानी कि फ्री ऑफ चार्ज आपके जो भी कोई फार्मेसीज हैं, हेल्थ सेंटर्स हैं या क्लिनिक्स हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जो निमोनिया है इसकी वैक्सीन के लिए फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो डिपेंडिंग आई मीन ऑफकोर्स ऑन द प्रोविंस ऑल्सो, मेरा नहीं ख्याल है कहीं और ये फ्री है भी। तो वो कहते हैं जी इसके लिए आपको पैसे देने पड़ सकते हैं, लेकिन अगर देने पड़े भी तो भी आप वैक्सीन जरूर उसकी करवा लें। यूनाइटेड नेशंस ने, जिसके के अंदर अब रिप्रेजेंट कर रही हैं सेवर यूनाइटेड नेशंस की स्पेशल रेपोर्टर, उन्होंने कहा है जी कि गाजा के अंदर जीनोसाइड जो है वो चल रहा है, और जब से ये उन्होंने बॉम्बिंग शुरू की है गाजा की, उस वक्त से 9,000 के करीब पैलेस्टीनियंस मर गए हैं। जो हमारा टीवी देख रहे हैं वो एक ही हमारा सीन हम आपको दिखा रहे हैं, और ये सीन शायद आपको लगेगा कि शायद किसी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का है। नहीं जी, ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का नहीं है, ये गाजा के अंदर जो कॉन्स्टेंटली इसराइल कर रहा है बम्बार्डमेंट, ये उसका सीन है। खासतौर पर जो जबलिया रेफ्यूजी कैंप के अंदर इन्होंने बॉम्बिंग की है, वो ये UN स्पेशल रेपोर्टर्स कहते हैं कि दिस इज अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ। और ये अब जो है इन्होंने अटैक्स चूंकि इंटेंसिफाई कर दिए हैं, तो दे आर अफ्रेड फॉर द सेफ्टी ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, जहां पे के लोगों ने गाजा में रिफ्यूज लिया हुआ है। इसके अलावा दे आर ऑल्सो कंसर्न्ड अबाउट द सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट कवरिंग ऑल दिस इन कॉन्फ्लिक्ट जोन, मीडिया वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज। और वो कहते हैं जी कि द पोजिशन इन गाजा हैज रीच द कैटेस्ट्रॉफिक पॉइंट। और आपको पता ही, हमने आपको बताई थी, खबर सुनाई थी कि October 28 को सीनियर यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स ऑफिशियल क्रेग मौखिबर जो हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि मैं अपनी आंखों से ये जो जीनोसाइड चल रहा है वो देखते हुए और यूनाइटेड नेशंस बिल्कुल पावरलेस देखते हुए मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता अपनी जॉब में। तो उन्होंने अपनी पोजीशन से छोड़ दिया था, जिसने जाहिर है कि काफी दुनिया के अंदर शोर वोर मचाया था। US सेनेट जो है जी उसने अब यूनानिमसली पास की है रेजोल्यूशन, और उसने कंडेम किया है ये जो अमरीका के अंदर आपको पता ही है जगह जगह पे ह्यूज किस्म के प्रो पैलेस्टीनियंस जो निकल रहे हैं प्रोटेस्ट उनके लिए, और बच्चे कह रहे हैं कि जी, स्टूडेंट्स कह रहे हैं, सैकड़ों ही स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमको अब जॉब्स में से निकाला जा रहा है जब हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जो मोर्चे हैं ये ज्यादातर निकाले हैं स्टूडेंट्स फॉर जस्टिस इन पैलेस्टाइन एंड ज्यूइश वॉइसेस फॉर पीस ने, और ये जो स्टूडेंट्स थे दे बिलोंग टू सम ऑफ द टॉप अमेरिकन यूनिवर्सिटीज लाइक कोलंबिया, प्रिंसटन, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटीज। और उन्होंने कहा था कि ये जो कुछ जुल्म कर रहा है इसराइल पैलेस्टाइन के अंदर, इसको फौरन रोकने की जरूरत है। बच्चों का कहना है जी कि हमारे सोशल मीडिया पोस्ट या कि जो भी हम अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके लिए हमको टारगेट किया जा रहा है, हमको जॉब्स नहीं दी जा रही है ना, ह्यूज नंबर सैकड़ों ही बच्चों ने लीगल असिस्टेंस जो है उसके लिए अब बहुत सारे लॉ फर्म्स को किया है, कांटेक्ट किया है। लास्ट वीक फ्लोरिडा के जो गवर्नर थे रॉन डिसेंटिस, उन्होंने भी कहा था कि अगर किसी ने भी प्रो पैलेस्टाइन मोर्चा निकाला तो उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जा सकता है, तो फौरन इसको शट डाउन किया जाए। इसके अलावा एडिटर इन चीफ ऑफ साइंटिफिक जर्नल ई लाइफ माइकल ईजन, उनको भी निकाल दिया गया है, उनको कहा है कि भाई आप रिजाइन करें अगर आप प्रो पैलेस्टीनियन हैं। इसके अलावा जो टॉप हॉलीवुड टैलेंट एजेंट है जैसे कि माहा दाखिल, उसको भी कहा जी कि आपको निकाला जा रहा है क्योंकि आपने गाजा में जो जीनोसाइड की आपने पोस्ट जो है वो शेयर किया। इसके अलावा बहुत सारे जर्नलिस्ट, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज US के अंदर, उन सबको जॉब से निकाला जा रहा है फॉर शोइंग यू नो द रियल साइड, मैं तो यही बोलूंगी, ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट कि इसराइल जो है जीनोसाइड कर रहा है इनका। तो बहुत सारी मुश्किलें हैं बच्चों के लिए US के अंदर, उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं। एसोसिएटेड प्रेस की ये न्यूज है जी, और इसके मुताबिक जो है US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स वो उसने पास किया है रिपब्लिकन प्लान ऑफ 14.5 बिलियन, जिसमें के दिया जाएगा मिलिट्री एड इसराइल को लिए इसको। और इनकी जो यहां पे रेजोल्यूशन हुई थी उसके अंदर 226 वोट्स फेवर में आए थे, 196 जो थे अगेंस्ट आए थे। ये पैकेज जो है इट इंक्लूड्स $4 बिलियन ऑफ रिप्लेनिशमेंट टू इसराइल्स आयरन डोम, डेविड स्लिंग मिसल डिफेंस सिस्टम, मिलिट्री नेसेसरी इक्विपमेंट और बहुत सी इस तरह की जो चीजें हैं। हालांकि आपको पता ही है कि बाइडन साहब की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लोग जो हैं बहुत ज्यादा खुश नहीं है कि अब बहुत ज्यादा पैसा यूक्रेन और इसराइल को दिया जाए, लेकिन फिर भी बाइडन साहब ने तो 106 बिलियन इमरजेंसी स्पेंडिंग पैकेज जो थी उसकी मांग की थी, और वो कहते थे कि हम इस सारे पैसे को ताइवान, यूक्रेन और इसराइल के अंदर जो है वो स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन अभी इनको 4 बिलियन डॉलर की मिली है, इजाजत मिली है। और आपको पता ही है कि इसराइल जो है वो सबसे ज्यादा यूएस से एड लेता है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अभी तक जो है यूएस ने इसराइल को 124 बिलियन यूएस डॉलर्स जो हैं वो ऑफर किए हैं, विच मींस 3.8 बिलियन पर ईयर अंडर देयर जो इनका 10 ईयर प्रोग्राम था जो कि स्टार्ट हुआ था 2016 में। पाकिस्तान को कितना चाहिए बचन वास्ते? 2 बिलियन है, तो इन्होंने 124 बिलियन इसराइल को दे देता। वाह जी वाह, पैन की गल है। रॉयटर्स की आज एक रिपोर्ट है जी, और इसके मुताबिक यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन साहब जो हैं वो अपनी टेस्टिमनी देने के लिए आए थे सेनेट्स अप्रोप्रिएशंस कमेटी कांग्रेस के अंदर, और वहां पर बहुत सारे प्रोटेस्टर्स जो थे अपने हाथों पर खून लगा के उन्होंने हाथ रेज किए और उन्होंने वहां पर नारे भी लगाए, सीज फायर नाउ, प्रोटेक्ट चिल्ड्रन ऑफ गाजा, स्टॉप फंडिंग जीनोसाइड, ब्लिंकन यू हैव ब्लड ऑन योर हैंड्स, मर्डरर, और इस तरह के वो लोग नारे लगाते रहे। और बहुत दफा जब वो अपना जवाब दे रहे थे कांग्रेस के सामने तो ये डिस्टरप्ट की गई उनकी स्पीच, और ये जो थी इनको बुलाया गया था हियरिंग के लिए कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नेशनल सिक्योरिटी सप्लीमेंटल फंडिंग जो कि जो उन्होंने रिक्वेस्ट डाली है वो क्यों उनको चाहिए इसराइल के लिए और वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन जब जब वो बोल रहे थे तो लोग रेज कर रहे थे हैंड्स और इनको मर्डरर मर्डरर कह रहे थे और कह रहे थे यू हैव ब्लड ऑन योर हैंड्स इस तरह करके, तो काफी दफा इनको रोकना पड़ा। कुछ लोगों ने तो वहां पे बहुत ज्यादा हंगामा आ रही कि एक मिलिट्री की ऑफिशियल थी, बूढ़ी हो गई हैं अब, वो उन्होंने तो बहुत शोर मचाया, उन्होंने कहा कि तुम्हारी पहले भी अमेरिका की पॉलिसीज थी, तुम लोगों ने इराक को बर्बाद किया है और अब तुम फिर से जो है पैलेस्टाइन को भी बर्बाद करना चाहते हो, मैं एक मिलिट्री अफसर हूं और मुझे पता है कि तुम लोग क्या पॉलिसीज जो है गलत किस्म की चलाते हो, तो उसको तो खैर कमरे से बेचारी को बाहर निकाल दिया गया था। जनाब दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय डॉन एंड कबोब। आपको पता ही है नई लोकेशन अपनी पे आ गए हैं, 5042 सैटेलाइट ड्राइव। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डॉन एंड कबोब को कॉल कर सकते हैं 416-285-8191। इसके अलावा राजा बादशाह जी, अगर आपको अच्छी सुविधाएं चाहिए तो ऑल स्टेट एजेक्स एजेंसी के साथ ये हैं, आपके $1,775 बचा सकते हैं। राजा बादशाह को कॉल करें 6472903773। और इसके अलावा अगर आपको विलेज टेस्ट जाना है, ऑन्टेरियो का लार्जेस्ट पाकिस्तानी हलाल बफे, तो आप इनके दोनों रेस्टोरेंट्स पे जा सकते हैं जो मिसेस सागा में है और अब ओकविल में है, 2294 लेक शोर रोड वेस्ट पे, और ऑर्डर्स के लिए आप इनको कॉल कर सकते हैं 9052262294 पे। पाकिस्तान के अंदर जी जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो आज बड़े नाराज नजर आए प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा है कि इन्होंने जनाब वायलेट किया है अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी थी बाय नॉट अनाउंसिंग द जनरल इलेक्शंस, और वो कहते हैं जी कि इसका ये जो हो सकता है एरर ऑफ जजमेंट हो सकता है। सेनेटर कामरान मुर्तजा ऑफ JUIF ने सेनेट को आज कहा कि आरिफ अलवी साहब को शायद अपनी ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 48(5) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन समझ नहीं आई हैं और इसीलिए वो अपनी ड्यूटीज नहीं दे सके, तो इसलिए उनको फौरन रेजिग्नेशन देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि अब उसका कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब वो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, उनको ज्यादा से ज्यादा इम्पीच किया जा सकता है इस चीज के लिए, लेकिन इम्पीच भी अब वो नहीं हो सकते हैं क्योंकि अब कोई पार्लियामेंट भी नहीं रही है। ये सारी डिस्कशन उस वक्त हुई जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सारी की सारी जो असेंबली रेजोल्यूशन हुई थी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल रेजोल्यूशन ऑफ जो असेंबली थी बाय आरिफ अलवी आफ्टर नो कॉन्फिडेंस मूव जो आया था अगेंस्ट इमरान खान, ये तो अंडर ट्रीजन आता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं काजी फैज ईसा ने तो ये कहा, उन्होंने कहा कि ये सारी की सारी चीज अंडर ट्रीजन आती है, और इनके साथ जो थे बेंच के ऊपर जस्टिसेस अथर मिनल्ला और अमीनुद्दीन खान भी थे, ये जो सारी सुन रहे थे आज की सारी हियरिंग। जस्टिस ईसा ने इसके ऊपर बात करते हुए कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ही क्लियर है और जिस वक्त ये नो कॉन्स्टिट्यूशन मूव आई थी तो उसके वजह से मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल क्राइसिस जो था वो आ गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसका फौरन नोटिस लिया था, और जो लोग हैं आप उनको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से दूर नहीं रख सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको इंपॉर्टेंट डिसीजंस बनाने होते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल, तो जो कि नहीं किए गए थे तो ये अंडर ट्रीजन आता है। इसके अलावा जी फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि नवंबर 9 को एक पब्लिक हॉलिडे होगी ऑन द ईव ऑफ इकबाल डे, और ये इकबाल का जो है अलामा इकबाल का 146th बर्थ एनिवर्सरी होगा, और इनकी पैदाइश जो थी नवंबर 9, 1877 को ही थी। इनको पोएट ऑफ द ईस्ट भी कहते थे और पोएट थे, फिलोसोफर से बड़ी इनकी जो थी इन्फ्लुएंस थी यूनाइटेड इंडिया में, और इन्होंने ही सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स का आइडिया दिया था, और इनका जो अलाहाबाद में एड्रेस था 1930 उसने फिर जो है प्री पार्टीशन पॉलिटिक्स जो थी वो उसको इम्पीटस दिया और वो शुरू हुई। पाकिस्तान के अंदर जनाब आज एक ब्लास्ट हुआ है फिर से पुलिस वैन के ऊपर, जिसकी वजह से 6 लोगों की डेथ हुई है और 22 लोग जो हैं टैंक अदा का एरिया जो है डेरा इस्माइल खान के पी के अंदर वहां पे इंजर भी हुए हैं। उनको इंजर्ड जो थे उनको नियर बाय हॉस्पिटल में लेकर गए, उनमें से एक की कंडीशन काफी जो है नाजुक है। 22 इसके अलावा जो इंजर हुए थे उसमें 2 पुलिस ऑफिसर्स भी थे। ये लास्ट मंथ भी इस तरह के 2 ब्लास्ट हुए थे केपी में और बलूचिस्तान में, जिसमें कि बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, और ये जो थे ब्लास्ट ईद मिलादुन्नबी के मौके पे हुए थे। इसके अलावा एक ब्लास्ट अभी लास्ट फ्राइडे को हुआ था हंगू में, जब फ्राइडे सर्मन चल रहा था उसमें 5 लोगों की डेथ हुई थी और 12 लोग इंजर हुए थे। तो ये कॉन्स्टेंटली जो है टेररिज्म की वारदातें जो हैं वो चल रही हैं। दिल्ली के अंदर लोगों की हालत काफी खराब है, दिल्ली के लोगों से सांस नहीं ली जा रही क्योंकि इतनी ज्यादा पोल्यूशन हो गई है। लोगों के फेफड़े जो डॉक्टर्स जो एक्सरेज कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि वो बिल्कुल काले पड़े हुए हैं, चाहे इंडिया के डॉक्टर्स हैं, चाहे WHO है, चाहे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, अमेरिकन जर्नल ऑफ रेस्पिरेटरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन है, सब ये कह रहे हैं कि यहां पे जो स्मोक है वो स्मॉग जो है वो बेतहाशा बढ़ गई है। इसीलिए अभी जो दिवाली आ रही है और उसके बाद जो क्रिसमस है उसमें दिल्ली के डॉक्टर्स वो लोग जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं या जिनको सांस की तकलीफ हो जाती है उनको कहा है कि दिल्ली से आप लोग निकल जाएं क्योंकि यहां पे एयर क्वालिटी बैड नहीं बल्कि वेरी बैड हो चुकी है। उन्होंने कहा जी कि हम इसकी मिसाल ऐसे देते हैं कि कोई एक आदमी 2 सिगरेट पीता है और कोई 20 सिगरेट पीता है, 2 सिगरेट वाले को पीने वाले को भी हार्म आएगा लेकिन जो 20 सिगरेट पी रहा है उसको बहुत हार्म है। तो इस वक्त कंडीशन ये ऐसी ही है और यहां पे जो हॉस्पिटल्स हैं वो अभी से ही भरने शुरू हो गए हैं। बहुत सारे लोग जिनको एक्यूट एज्मा और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज और एक्यूट कोरोनरी इश्यू है उनको डॉक्टर्स ने कहा कि फौरन दिल्ली आप छोड़ दें। हिंदुस्तान के अंदर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है उसने आज फिर से जी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को बुलाया, लेकिन अरविंद केजरीवाल वहां पे गए नहीं है बल्कि उन्होंने दिन जो है वो गुजारने की कोशिश की मध्य प्रदेश के अंदर। लेकिन अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जी ये जो इंडिया अलायंस है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इंडिया जिसको कहा जा रहा है, इसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आपके उन्होंने कहा जी आपके लीडरों को जैसे कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, राज्यसभा के एमपी संजय सिंह, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन, ये सारे जो आपके ऑफिशियल्स हैं इनको इसलिए ईडी पकड़ रहा है क्योंकि वो इंडिया ब्लॉक को नुकसान पहुंचाना चाहता है। सीनियर बीजेपी के लीडर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है क्योंकि बीजेपी आम आदमी पार्टी की करप्शन सामने आ रही है। वो बड़ा कहते थे कि जी हम तो बड़े साफ हैं, ये सारी हॉलोनेस जो एक्सपोज हो गई है और इंतहाई करप्ट किस्म का ये टोला है, और ये जो इंडिया अलायंस है ये अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस है। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन संबित पात्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी का ये सारा जो एब्सोल्यूट ऑनेस्टी का जो भरम है ये सारा सामने आ गया है क्योंकि ये जो है एब्सोल्यूटली करप्ट और शेमलेस किस्म के लोग हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो हैं जी वो आज दिल्ली और एनसीआर के एरिया में बड़े कुछ इंटेंस सीन करते हुए नजर आए क्योंकि उनकी एक फिल्म आ रही है सेक्शन 108, इसमें वो नजर आए रजीना कैसेंड्रा के साथ एज अ लीडिंग रेडी, और उसमें कहा जा रहा है कि जी अपना फर्स्ट स्केड्यूल वो कंप्लीट कर चुके हैं, अब ये थोड़ा रेस्ट लेंगे और सेकंड स्केड्यूल जो है नवंबर के एंड पे शुरू होगा, फिल्म मार्च 2024 के अंदर रिलीज होगी मेकर्स कहते हैं इफ एवरीथिंग गोज ऑल राइट। सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 का नया प्रोमो सामने आ गया है जिसमें कि देखा जा रहा है कि इमरान हाशमी जो है वो बड़े ड्रेडेड विलन के रूप में हैं, और उसके अंदर जो 1 मिनट का वीडियो है उसमें इमरान हाशमी कह रहे हैं कि इट्स टाइम फॉर यू टू लूज टाइगर और मैं हिंदुस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगा। टाइगर कहता है तुमने सब कुछ ठीक किया लेकिन तुम एक चीज भूल गए कि अभी तक टाइगर जिंदा है और जब तक ये जिंदा रहेगा उसको हराना मुश्किल है। राम मधावन और सुष्मिता सेन की जो आर्या जो है उसका सीजन 3 जो है अब आ रहा है। पहले 2 सीजन में जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आया था उसमें ये बड़ी ही डरी हुई मां नजर आई थी लेकिन अब ये तीसरी सीजन थ्री में डॉन के तौर पे नजर आएंगी, और ये ऐसे शुरू होएगा सीजन टू से कि जब लास्ट में इन्होंने अपने बायोलॉजिकल फादर को गोली मार दी थी और ये डर गई थी, लेकिन अब ये डॉन के रूप में नजर आएंगी। और ये जो है इसका जो टीजर है वो शुरू होता है इनके डेड हस्बैंड तेज की मेमोरियल सॉन्ग, बड़े अच्छे लगते हैं उससे, और सुष्मिता सिंह काले कपड़ों में नजर आएंगी और हुड उन्होंने लगाई हुई है और सिगरेट स्मोक कर रही हैं, और अब ये एक लायनस की तरह रोर करेंगी, मेकर्स का ये कहना है। आज वर्ल्ड कप के मैच में जनाब अफगानिस्तान का मैच था नेदरलैंड्स के साथ, जिसमें कि अफगानिस्तान ने नेदरलैंड्स को 7 विकेट से हराया, और ये जो थे चेज कर रहे थे 180 runs टू विन, क्योंकि इन्होंने पूरी टीम को आउट कर दिया था 179 रन्स पे, और अफगानिस्तान ने ये अपनी चौथी जीत अब ली है। इसमें रहमत शाह ने अपनी 30 successive 50 बनाई, 54 of 52 बॉल्स, हशमतुल्ला शहीदी ने 56 नॉट आउट, और ये थर्ड 50 थी उनकी इन अ रो। शाह जो हैं उन्होंने अपनी जो बनाए थे 77 अगेंस्ट पहले पाकिस्तान, 62 अगेंस्ट श्रीलंका, तो अब ये जो हैं सेमीफाइनल की रेस में आ चुके हैं। इससे पहले जो ओपनर्स थे रहमतुल्ला गुरबाज वो 10 पे और इब्राहिम जदरान 20 पे आउट हो गए थे, लेकिन फिर शाहिदी ने जो है और इन्होंने जो है शाह ने मिलके फिर इसको अपनी टीम को सहारा दिया। शाहिदी ने भी बनाए थे 80 इंडिया के अगेंस्ट भी और 58 श्रीलंका के अगेंस्ट भी, और इन्होंने डिफीट किया था अफगानिस्तान ने डिफेंडिंग चैंपियंस इंग्लैंड, श्रीलंका और पाकिस्तान को, और अब इनके पास भी 8 points हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास हैं, और दोनों ही तकरीबन क्वालिफाई कर गए हैं। इंडिया जो है ऑलरेडी सेमीफाइनल्स में है, और अफगानिस्तान का जो मैच है 5-time चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के साथ है, तो देखेंगे अब ये कैसा रहेगा। पाकिस्तान के टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तान के अंदर बड़ी टाइट सिक्योरिटी रही वो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हम कोविड के जमाने में रह रहे हैं, और ज्यादातर लड़के जो थे वो होटल के रूम्स में थे, इन लड़कों को बाहर फिरने की आदत है, और कभी हमारे ऐसे मैसिव अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी जो थी हम कभी भी फेस नहीं करते थे, लेकिन अब ये लड़के जो हैं कमरों तक जो है वो कन्फाइन होकर रह गए हैं, यहां तक कि अपने ब्रेकफास्ट भी अपने रूम में करते थे। और पाकिस्तान जो है फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 2016 इंडिया में अब खेल रहा है, तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स बहुत टाइट किए गए थे, लेकिन उसके ऊपर मिकी आर्थर जो है ज्यादा खुश नहीं है। पाकिस्तान के वाइस कैप्टन जो है शादाब खान वो शायद अब नजर नहीं आएंगे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच में, और उनकी जगह जो है अबरार अहमद को खिलाया जाएगा, क्योंकि उनके फिटनेस के मसले आ गए हैं। इनको कंकशन हुआ था और ये तीसरी बार है जो इनको कंकशन हुआ था। अभी जो लेटेस्ट हुआ है वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हुआ था, जब इन्होंने बॉल एक रोकने की कोशिश की थी और शोल्डर के बल गिरे थे और सर इनका ग्राउंड पे लगा था, और उसकी वजह से लग रहा था कि इनकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी। और इससे पहले भी वो ससेक्स टीम मेट के साथ T20 मैच में यूके में मई के महीने में भी उनको कंकशन आई थी, और फिर एशिया कप में भी लास्ट ईयर आई थी, लेकिन आज बेंगलुरु में वो प्रैक्टिस करते हुए नजर आए, लेकिन ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि शायद अबरार अहमद ही करेंगे। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज जो पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ मैच अब आने वाला है उसके अंदर न्यूजीलैंड ने भी एक चेंज की है। मैट हेनरी जो है उनको राइट हैमस्ट्रिंग जो है वो उनका टूट गया है, तो उसकी वजह से उनको रिप्लेस कर रहे हैं कायली जैमिसन, और अब ये जो मैच होगा सैटरडे को यानी कि कल चिन्ना स्वामी स्टेडियम के अंदर है, और ये जो मैच में इनको इंजरी आई थी वो वेंसडे को जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल रहे थे हेनरी पुणे में तब आई थी, तो ये सेकंड ग्रेड लोअर टीयर है जिसको के 2 to 3 weeks लगेंगे रिकवर करने के। लेकिन कायली जैमिसन जो हैं उसके लिए बड़ी तारीफें कर रहे हैं न्यूजीलैंड की टीम, वो उन्होंने 13 ODIs खेले हैं, और उनका अप्रूवल जो टीम के अंदर है वो दिया था इवेंट टेक्निकल कमेटी ने। तो ये थी जनाब हमारी आज की खबरें, और इसके बाद अब हम जाएंगे कैसर सगीर साहब के पास, और वो हमें जो है सारे अपडेट्स देंगे और पाकिस्तान की क्या पोजीशन हो सकती है सेमीफाइनल्स में उसके ऊपर बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।
ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप एंजॉय कीजिए 7:70 AM पर। सेमीफाइनल्स और फाइनल बराहे रास्त इंडिया से मुकम्मल कवरेज, लम्हा बलम्हा तफसील और हर मोमेंट का मजा 7:70 AM की स्पोर्ट्स टीम के साथ।
अपने दांतों की हिफाजत के लिए राबिता कीजिए आपकी अपनी डॉक्टर नाजिया रहमान, लेजर टूथ व्हाइटनिंग, रूट किनाल ट्रीटमेंट, डेंटल इम्प्लांट्स,
फ्री डेंटल ट्रीटमेंट फॉर किड्स हेल्थी स्माइल्स ओंटारियो के तहत डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा 65 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट यूनिट 104 मिसिसागा रोड एंड फाइनेंशियल ड्राइव
कॉल कीजिए डॉक्टर नाजिया रहमान 9058721100 कंसल्टेशन एब्सोल्युटली फॉर फ्री डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा
कैनेडियन इमिग्रेशन के लॉज और पॉलिसीज में मुस्तकिल तब्दीलियां आती रहती हैं इसलिए इंतहाई जरूरी है कि आपका काम माहिराना तरीके से ताज़ा तरीन मालूमात के तहत किया जाए मेरा नाम यास्मीन तैयबी है और मैं गुज़िश्ता 25 सालों से सिटीजनशिप पीआर रिन्यूअल्स स्पाउसल स्पॉन्सरशिप और एजेंसी के पेचीदा केसों को कामयाबी से करके हजारों लोगों की रहनुमाई कर चुकी हूँ khairamsolutions.ca पर जाकर हमारी फर्म के बारे में मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं हमारे ऑफिस में सर्टिफाइड उर्दू टू इंग्लिश तर्जुमे की भी सहूलियत मौजूद है
ताजा सब्जियां ले तोड़ी इको ही पसंद कैलेडन सब्जी फार्म एयरपोर्ट रोड ते मेफील्ड इंटरसेक्शन थानी ताजा सब्जियां लेके आ गए ने तोड़े ले पालक मेथी मूली हरिया कौड़िया मिर्चा किया पिंडी बैंगन शलजम ते लाल गाजरा ताजा साग जिते सेल लाती है 10 कटिया सिर्फ 15 डालरां विच तनूर इंडियन मंजा फोल्डिंग बेड भी विकन ले मौजूद ने आज ही अपड़ो कैलेडन सब्जी फार्म 12050 एयरपोर्ट रोड कैलेडन 9058409000 इस दिवाली पर गो ट्रांसिट आपके लिए लेकर आए हैं गो दिवाली ट्रेन यूनियन स्टेशन से किशनर तक गो दिवाली ट्रेन पर दिवाली मनाते हुए अपने सफर को यादगार बनाएं एक खास जश्न का मजा लें और शामिल हो जाएं म्यूजिक डांस और बहुत से तोहफों भरे खूबसूरत सफर में मजीद मालूमात के लिए gotransit.com/diwali
काश पैसे घर भेजना आसान और सुविधाजनक होता सीआईबीसी ग्लोबल मनी ट्रांसफर के जरिए आपके प्रियजन उसी दिन कैश पिकअप सर्विस के साथ लोकल मनीग्राम एजेंट से कैश उठा सकते हैं इसका मतलब है कि वे कैश उसी दिन ले सकते हैं जैसे कि ये दिन और ये दिन अगर आप खुशियां बांटने जा रहे हैं तो $0 सीआईबीसी ट्रांसफर फी के साथ कैश पिकअप सर्विस के जरिए भेजें cibc.com/cashpickup पर जाएं शर्तें और सीआईबीसी फॉरेन एक्सचेंज रेट्स लागू सीआईबीसी एम्बिशंस मेड रियल
Grill in the Hut, Mrs. Saga में order via phone. इमरान भाई को call करें.
इंतहाई लजीज बिरयानी खाना हो या फिर कढ़ाई खाना हो या फिर स्टेक्स को enjoy करना है तो आप order place कीजिए 9054058383 Grill in the Hut.
Welcome back. जैसे कि हम आपको कह रहे थे कि हमारा special आज जो cricket का segment है वो कैसर सगीर के साथ रहेगा तो अब हम उनकी तरफ जाते हैं और उनसे बात करते हैं जी हेलो एंड वेलकम कैसर सगीर कैसे हैं आप
जी बिल्कुल ठीक ठाक कैसे हैं
बस जी बिल्कुल ठीक हम तो आपको सोच रहे थे कि जैसे आज आप हमारे स्टूडियो में आएंगे क्योंकि आप आज मिसेस सागा में ही थे लेकिन आप हमें दगा दे गए हैं
प्लान तो यही था लेकिन आपने मुझे आधे रास्ते में बताया
नहीं नहीं आपको तो मैंने तीन दिन से बताया हुआ है तीन दिन से मैंने आपको बताया और आपने यस कहा हुआ है कि यस यस आई विल लेकिन हाँ शायद स्टूडियो आने के
टाइम चेंज कर दिया ना टाइम मेरा ख्याल 6 बजे का था
हाँ वो तो हमारा अब जैसे जैसे अब पीछे आता जाएगा ना अब नेक्स्ट वीक जब हम आपको लेंगे तो हम आपको तकरीबन जो है वो 4:15 कुछ ऐसे करके लेंगे तो दैट इज वाई तो हमारा टाइम पीछे आते जा रहे हैं हाँ जी हाँ जी
बिल्कुल ठीक है आपने पहले चेंज कर लिया वैसे टाइम चेंज हो रहा है संडे से
हाँ, हाँ, पहले चेंज कर हम थोड़ा आगे चलते हैं ना थोड़ा सा
बिल्कुल ये तो मैं देख रहा हूँ
हाँ आगे चल रहे हैं ना ऐसे और जो है आप देखेंगे कि और भी हम जो क्रिकेट की और भी बहुत सारी चीजें नई नई लेकर आएंगे अच्छा जी आज तो बताएं आज का जो फिर से जो जीत गया है अफगानिस्तान ने तो ऐसी फेंटी लगाई हुई है इस दफा ये हो क्या रहा है इनके साथ इस दफा इन्होंने क्या खाया है कोई इन्होंने रेड बुल पी है क्या किया है बताएं जरा
देखिये होता क्या है कि जब आप किसी अच्छी टीम के खिलाफ मैच जीतते हैं ना तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है अफगानिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में आप देखें तीन जो फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियंस हैं उनको हराया
हाँ।
उसमें इंग्लैंड शामिल है उसमें पाकिस्तान शामिल है और उसमें तीसरी टीम श्रीलंका शामिल है
जी
तो जब आप तीन वर्ल्ड चैंपियंस को हराते हैं तो आप सोचिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहां पर होगा उसके बाद आप नीदरलैंड को तो कोई अहमियत नहीं देंगे ना
या।
और उन्हें दूसरी चीज ये भी उन्हें पता चली जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 280 प्लस था ना जब उन्होंने वो चेस किया तो उन्हें ये समझ आ गया कि हम लोग ये बिलो 300 टारगेट बड़े आराम से चेस कर सकते हैं यही वजह है कि वो पिछले 3-4 मैच में आप देखें उन्होंने चेस किया है और ये बहुत उनकी स्ट्रेंथ बन गया है बल्कि बाकी जो टीम है मेरा ख्याल है वो भी अब सोच रही होगी क्योंकि अफगानिस्तान का एक प्लस पॉइंट ये है कि उनके पास अच्छी स्पिन बॉलिंग है, उनके तमाम जो बॉलर्स हैं वो T20 लीग्स खेलते हैं पूरी दुनिया में, तो उन्हें तमाम प्लेयर्स का पता भी है कि किसका वीक पॉइंट कहाँ पर है। पाकिस्तान में वो PSL खेलते हैं, तो इस लिहाज से अफगानिस्तान
और इंडिया में IPL भी खेलते हैं, इंडिया में भी खेलते हैं IPL।
जी जी बिल्कुल, वही मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास IPL का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान के पास IPL का भी एक्सपीरियंस है और PSL का भी है। तो यही वजह है कि उन्हें जो अब तक उनकी टीम में कमी थी ना, वो थी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो वो कॉन्फिडेंस उन्हें मिला जब उन्होंने इंग्लैंड को हराया, वर्ल्ड चैंपियन को, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को हराया। तो फिर बाकी टीमें तो मेरा ख्याल है कि कुछ नहीं थी। श्रीलंका तो वैसे ही माशाल्लाह, जो सूरत हाल उनकी देख लें, आपके एशिया कप में वो फाइनल में इंडिया के खिलाफ 50 पर आउट हो गए थे, इस दफा वो 55 पर आउट हो गए हैं। अब जब ये टीमों की सूरत हाल होगी तो अफगानिस्तान तो मैच जीतेगा यकीनन।
अच्छा, तो अब तो सूरत हाल बड़ी मुझे टफ लग रही है, अब तो सेमीफाइनल की रेस में मुझे लग रहा है कि अफगानिस्तान भी आ रहा है, तो क्या लग रहा है आपको, ऐसा हो सकता है?
देखिए, अगर फैक्ट्स की बात की जाए ना, तो इस वक्त मेरा ख्याल है बांग्लादेश को निकालकर सब लोग ही उसमें रेस में है, लेकिन हम अगर ज्यादा क्लोजली इसको मॉनिटर करें तो इस वक्त 3 टीमें हैं जो ज्यादा करीब है सेमीफाइनल के लिए। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका तो तकरीबन कंफर्म है। अब जो चौथा स्पॉट है वो पाकिस्तान, न्यूजीलैंड या अफगानिस्तान को मिलना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के चांसेस अभी भी ज्यादा हैं, बल्कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मतलब लक फेवर कर रही है अभी तक, इसलिए कि अफगानिस्तान के जो 2 मैच है ना आगे, वो दोनों उन टीमों के साथ है कि जो जबरदस्त फॉर्म में है, उनमें से एक ऑस्ट्रेलिया और दूसरी साउथ अफ्रीका है। अफगानिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा उनको हराना। दूसरा ये कि अफगानिस्तान को मैच जीतने के साथ साथ अपना रन रेट भी ऊपर करना पड़ेगा। जब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने मैच खेलना है अब चंद घंटे बाद, यहाँ कैनेडा के वक्त के मुताबिक सुबह 1 बजे मैच शुरू होगा। तो उसमें पाकिस्तान का एक प्लस पॉइंट ये है कि न्यूजीलैंड को पाकिस्तान ने बहुत से ICC इवेंट्स में हराया है, जितने इवेंट्स में पाकिस्तान ने उसको हराया है, न्यूजीलैंड का वो कॉन्फिडेंस पाकिस्तान के खिलाफ, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत शेकी होता है पाकिस्तान के खिलाफ, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इसी का एज लेना चाहिए और इंशाल्लाह पाकिस्तान लेगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान ये मैच विन करेगा और उसके बाद इंग्लैंड को भी इंशाल्लाह पाकिस्तान हराएगा। मुझे कुछ लग रहा है, पता नहीं क्यों, कुछ वाइब्स ऐसी हैं कि जो हालात पाकिस्तान के लिए बनते जा रहे हैं वो अच्छे बनते जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद आगे जाके क्या करेंगे, ये वहां तक पहुंचते नहीं है, बहरहाल अभी एक मरहला है, लेकिन अगर आगे पहुंचते वहां जाके क्या करते हैं वो एक अलग कैलकुलेशन होगी।
हाँ जी, आपकी जो बात है वो बिल्कुल वैसी ही है जो कि अभी हमने जो 3 दिन पहले वसीम बारी साहब से बात की थी, तो वो भी कह रहे थे कि मुझे भी लग रहा है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड और इंग्लैंड दोनों को हरा लेगा और जरूर सेमीफाइनल्स में पहुंचेगा, लेकिन सेमीफाइनल में ऑलरेडी इंडिया और जो है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका भी तकरीबन, जैसे आपने कहा न्यूजीलैंड के भी बहुत से चांसेस हैं, और लेकिन अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के 8-8 पॉइंट्स हैं अब, तो अगर यहां से अफगानिस्तान हारना शुरू होएगा, आप अगर जैसे आप कह रहे हैं, तो फिर तो वो भी बाहर जाएंगे और इन टीम्स के पॉइंट्स ऊपर आ जाएंगे ऑस्ट्रेलिया का तो एटलीस्ट। तो अब कल का जो मैच है उसके ऊपर सारों की नजरें हैं जो कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड के बीच में होने वाला है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि कल का जो मैच है न्यूजीलैंड पाकिस्तान के बीच में, उसमें न्यूजीलैंड के क्या वीक पॉइंट्स हैं और स्ट्रेंथ्स क्या हैं और पाकिस्तान के वीक पॉइंट्स और स्ट्रेंथ्स क्या हैं, क्योंकि कल पाकिस्तान की टीम में शादाब भी नहीं खेल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली तो बताएं।
देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के लिए जो चीजें फेवर कर रही है ना वो ये कि न्यूजीलैंड की टीम में बहुत सी इंजरीज हो गई हैं, उनका जो हेनरी है मतलब कि मेन बॉलर है या उनके जो दूसरे चंद प्लेयर्स हैं वो फिट नहीं है इस वक्त,
उसकी जगह तो जेमिसन आ गया ना, हेनरी की जगह तो जेमिसन को खिला रहे हैं वो। हाँ
नहीं, जेमिसन तो खैर बहुत से मैचेस से खेल रहे हैं ना।
हाँ,
लेकिन बात यह कि उनके बहुत से प्लेयर हैं, देखिए केन विलियमसन ऑलरेडी आउट था, उनकी बैकबोन है टीम की, वो पहले से आउट है, हेनरी भी आउट होता है, इसके अलावा भी 1-2 प्लेयर्स हैं जिनका मैंने पढ़ा था कि वो भी फिट नहीं है इस वक्त, और चांसेस है कि वो ज्यादा नहीं तो 1-2 मैचेस के लिए मतलब उनका भी वो मुश्किल होगा उनके लिए खेलना, या उतने अगर खेले भी तो उतने फिट नहीं होंगे। तो पाकिस्तान के लिए खैर ये 3-4 चीजें अच्छी, शादाब की तो बात ना करें, शादाब का होना ना होना इस वर्ल्ड कप में कोई मैटर नहीं करता ज्यादा, तो इसलिए मैं तो कंसर्न नहीं हूँ, बल्कि वाजगत वो ब्लेसिंग इन डिसगाइज होता है ना कि अगर वो इंजर्ड हुआ है तो हो सकता है पाकिस्तान के लिए कुछ से बेहतर हो जाए। लेकिन पाकिस्तान के लिए मैं हमेशा समझता हूँ कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है ना, अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले खेलता है तो पाकिस्तान के लिए शायद ज्यादा बेहतर है, क्योंकि न्यूजीलैंड भी उन टीमों में है जो बहुत बड़ा टोटल चेस नहीं कर पाते, यानी कि अगर 300 प्लस पाकिस्तान ने लगा दिया तो न्यूजीलैंड के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा चेस करना जो उनकी मौजूदा सूरत हाल है। लेकिन दोनों सूरतों में पाकिस्तान पहले खेले बाद में, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा, क्योंकि पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है न्यूजीलैंड के खिलाफ, और इस वक्त टीम जो है ना पूरी तरह पंप अप हो चुकी है। उन्हें खासतौर पर बांग्लादेश ने जरा मैच जीता उससे उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस मिला है, और खासतौर पर फखर जमान के आने से पाकिस्तान की टीम, क्योंकि फखर के बारे में तो मैंने दुनिया के बहुत से प्लेयर्स को सुना है इस वर्ल्ड कप में भी और इससे पहले भी कि फखर अगर चल पड़ता है तो बस फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। देखिए पाकिस्तान के पास जो कमी थी ना अभी तक वो यही था कि आपको एक ऐसा ओपनर चाहिए था जो छक्के लगाए, सिक्स लगाए ना, तो इसने आते साथ ही 6-7 मतलब सिक्स लगाए अपनी इनिंग्स में। तो पाकिस्तान को ये चाहिए था कि जब आप अपने रन रेट को ऊपर ले जाएं, जब आप तेजी से टोटल को चेस करें, और अगर आप पहले खेल रहे हैं तो आप एक बड़ा टारगेट दें दूसरी टीम को। तो मेरा ख्याल है कि ये आने से फर्क पड़ा है, और दूसरा ये कि अब्दुल्ला शफी वो भी काफी बेहतर खेल रहे हैं, तो पाकिस्तान के पास इस वक्त अच्छी बैटिंग लाइनअप है, और अगर उनमें से 2-3 प्लेयर चल गए तो इंशाल्लाह कल का दिन पाकिस्तान का होगा।
अच्छा, ये जो नया लड़का आया है शादाब की जगह पे अबरार बॉलर, तो ये आपको कैसा लग रहा है? इसकी बॉलिंग आपने इससे पहले देखी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि ये कोई वाकई एसेट साबित हो सकता है या नहीं?
देखिए अबरार जो है ना वो उसका एक प्लस पॉइंट तो ये है कि उससे ज्यादा टीमों ने देखा नहीं हुआ, ये उसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि बाकी प्लेयर्स उनको वो बहुत मरतबा खेल चुके हैं, तो एक तो ये प्लस पॉइंट। दूसरा ये कि अबरार जो है ना वो बहुत अच्छा बॉलर है, और उसको मैंने टेस्ट में देखा है खेलते हुए, और उसने मतलब उसको इतना आसान नहीं है खेलना। तो मेरा ख्याल ये जो 10 ओवर्स का मैच है ना इसमें पाकिस्तान को चाहिए था, इफ्तिखार अहमद भी आपके पास बॉलिंग कर रहा है, अगर अबरार अहमद को खिलाते हैं तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए ज्यादा अच्छा होगा, वो काफी मुश्किल पैदा करेगा कीवी जो न्यूजीलैंड के बल्लेबाज है ना, वो भी स्पिन को खेलने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है न्यूजीलैंड वाले, और जब वो ढेर होने पे आते हैं तो बाज का तो वो उस टीम के बारे में मैं कहता हूँ कि बाज का तो 100 भी नहीं कर सकती, यानी कि 100 से भी पहले आउट हो सकती है न्यूजीलैंड। और आप देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड ने 4 जो मैच जीते थे ना, एक और चीज ये पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में एक और चीज जो मुश्तरक है ना, इन दोनों ने कमजोर टीमों के खिलाफ मैच जीते हुए हैं, जहां पे भी ये टफ टीमों के खिलाफ आई है ये इन्होंने मैचेस अपने हारे, इस वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए अब इन दोनों का आमने सामने आना, मैं न्यूजीलैंड को पाकिस्तान से कोई बहुत ज्यादा बेहतर नहीं समझता, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के चांसेस क्यों ज्यादा महसूस हो रहे हैं कि इंग्लैंड का मोराल बहुत डाउन है, इंग्लैंड बहुत मतलब मुसलसल हारता आ रहा है मैच, और न्यूजीलैंड भी पिछले 3 मैचेस हार चुका है, तो पाकिस्तान के लिए फेवरेबल होगा, लेकिन न्यूजीलैंड के क्वालिफाई करने के चांसेस मैं फिर भी नहीं कहूंगा कितने कम है, इसलिए कि उसका आखिरी मैच श्रीलंका से है, और वो श्रीलंका को मतलब ये कह ले कि हरा सकते हैं, उनका रन रेट हमसे बेहतर है, तो इसलिए क्वालिफाई करने के चांसेस न्यूजीलैंड के कम नहीं होंगे। लेकिन कल का जो मैच है उसमें अभी जो अगर आप कैलकुलेशन करें फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखें तो पाकिस्तान 60-40 से कम अज कम लीड करता है।
अच्छा, ये जो अब जो सारी टीमें हैं ये अब नेक्स्ट ईयर T20 भी होने वाला है और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी भी होगी, तो आपको क्या लग रहा है कि कौन सी 8 टीमें आपको बहुत ही लग रही हैं कि भाई ये तो हर हाल में ही खेलेंगी ये जो मैचेस आने वाले हैं आगे कुछ सालों के अंदर?
आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रही
हैं, वो तो 2025 में है, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो है T20 भी तो होने वाला है ना, तो T20 में और फिर चैंपियंस ट्रॉफी में तो खैर 8 ही टीमें हैं जाहिर है, लेकिन ये जो आने वाले जो मैचेस हो रहे हैं उसके मैं पूछना चाह रही हूं कि उसके अंदर टीमों की स्ट्रेटजी क्या होगी कि हम ये इन टीम्स के अंदर रहें, ये जो यानी फ्रेमवर्क है इसके अंदर हम रहें।
जी देखिए ना, इसीलिए अगर आप किसी भी टीम को देखें ना तो वो अभी भी पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए कि उनकी कोशिश है कि वो 2025 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में रहे। पाकिस्तान को इतना मसला इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान उसका होस्ट है, पाकिस्तान ऑटोमेटिकली उसमें खेलना ही खेलना है चाहे पाकिस्तान 12वें नंबर पे क्यों ना हो, लेकिन जो बाकी टीम है उन्होंने टॉप 7 में अपनी जगह बनानी है, क्योंकि 8वीं टीम पाकिस्तान है तो टॉप 7 में वो होंगे तो वो खेलेंगे। इसी तरह T20 है, तो मेरा ख्याल है कि आप जो है ना क्रिकेट स्पेशली जो T20 की बात करें तो इसमें इतना कम मार्जिन रह गया। देखिए वन डे में मैं हमेशा से कहता हूं कि जो आपकी अच्छी टीम है ना वो टेस्ट में उसका पता चलता है कि वो कमजोर टीमों को नहीं जीतने देती, उसके बाद आपका वन डे था जिसमें जो आपकी मजबूत टीमें थी वो कमजोर टीमों को आराम से हरा देती थी, क्योंकि 50 ओवर्स खेलना उन टीमों के लिए मुश्किल होता था। फिर आप T20 की बात करें, लेकिन अब बहुत सी टीमों ने बहुत ज्यादा इंप्रूव किया वन डे में, जैसे नेदरलैंड्स ने उसने बहुत इंप्रूव किया है, जैसे अफगानिस्तान ने उसने बहुत ज्यादा इंप्रूव किया। तो आने वाले वक्तों में अब ये सब टीमें, मतलब आप उसको वही बात है कि कंडीशन कैसी होगी, उस दिन कौन अच्छा परफॉर्म करेगा, टास्क कौन जीतेगा, किसके बैट यानी कह लें कि जो प्लेयर्स हैं वो प्रेशर को ले लेंगे, तो उसके मुताबिक अब ये टॉप 8 में जो टीमें इस वर्ल्ड कप में आपको नजर आएंगी ना, आइंदा भी आपको वही टॉप टीम टॉप 8 नजर आएंगी, चाहे आप T20 ले लें या चाहे आप वो चैंपियंस ट्रॉफी ले लें।
अच्छा जो है कैसर, ये आपसे मैं अब वर्ल्ड कप से हटके बात कर रही हूँ, पीसीबी के ऊपर बात कर रही हूँ। बेतहाशा आजकल जो है पुराने हमारे जो वेटरन्स हैं वो एतराज कर रहे हैं पीसीबी की मैनेजमेंट के ऊपर, जहीर अब्बास, शाहिद अफरीदी, आज तो खैर शाहिद अफरीदी की दोस्ती वोस्ती कोई जका अशरफ साहब के साथ हो गई, लेकिन वो कह रहे हैं जी कि फॉर गॉड सेक ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको क्रिकेटर्स को रन करने दें, अगर ये इस तरह के अनप्रोफेशनल लोग रन करेंगे तो इस का बहुत ज्यादा जो प्रेस्टीज है उसको झटका लगेगा। खासतौर पे ये जो इन्होंने कुछ दिन पहले कुछ ये जो चैनल्स के ओनर्स को बुला के कहा कि भाई तुम लोग अपने चैनल्स को कंट्रोल करो, मेरे खिलाफ क्यों बातें कर रहे हैं, ज़का अशरफ साहब ने कहा, तो उसके ऊपर भी बड़े एतराज आए। तो ये क्या खिचड़ी पकी हुई है, क्या चल रहा है यहां पर, और कुछ रेप्यूटेशन भी कोई इतनी खास अच्छी नहीं है ज़का अशरफ साहब की, तो क्या कहते हैं आप इसके बारे में? अलेजली आई मीन आई हैव जस्ट हर्ड अबाउट इट। सो
जी जी देखिए, अगर आप अपने नेबर को देखें, इंडिया को देखें ना, तो वहां भी जय शाह जो है ना वो लीड कर रहे हैं बोर्ड को, और वो भी एक सियासी पार्टी से उनका ताल्लुक
है, अमित शाह के बेटे हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह उनके बेटे हैं। हाँ।
तो मसला वो पॉलिटिकल एक जो एफिलिएशन है वो तो एक अलग चीज है, लेकिन बात ये होती है कि आपका स्ट्रक्चर कितना मजबूत है। हम लोग इस चीज से मार खाते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर मतलब बहुत वीक है, और दूसरा ये कि कोई कोई एहतसाब करने वाला नहीं है। अब देखिए, आपका वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें आपने मतलब मैं तो वैसे ही हक में नहीं ज़का अशरफ के, क्योंकि वो मतलब बकौल अब्दुल रज़ाक के एक फिक्रा नहीं बोल सकते मीटिंग्स में ना, मतलब ये तो उनका कैलिबर है, लेकिन उनको जरदारी ने मतलब पुश किया और उनको यहाँ लाया गया इस पे, जबकि उससे पहले मैं नजम सेठी के भी हक में नहीं हूं, मैं कहता हूँ सीधा सीधा रमीज राजा को होना चाहिए। लेकिन आप पूरी दुनिया में जाते हैं, आप अपने मतलब कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपके पास एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो जिसकी अपनी परफॉर्मेंस हो, जो अच्छी जिसकी अच्छी तालीम हो, जो कम्युनिकेट कर सकता हो, कॉन्फिडेंस हो जिसमें ना, बजाय कि आप उन लोगों को भेज दें जिन्हें कोई जानता ही ना हो, और वहां पर आप सोचो ना क्या अहमियत मिलेगी, वो किस तरीके से कन्विंस कर पाएंगे। यही वजह है कि हमने जो एशिया कप है वो अपना खराब किया, हम उन्हें कन्विंस नहीं कर पाए कि वो हमारे यहाँ के खेले, हमने जाके तीसरे मुल्क में जाके मैचेस खेले और हम पूरी तरीके से हारे। आप जब अपने वर्ल्ड कप की बात आई तब भी आप कुछ नहीं कर सके, उन्होंने आपके स्टाफियों को वीजे नहीं दिए, उन्होंने आपके जो लोग देखना चाहते थे उनको वीजे नहीं दिए, आप कुछ नहीं कर सके क्योंकि पर्सनालिटी नहीं है ना। यहाँ पर अगर रमीज राजा होते तो आप देखते डिफरेंस आपको नजर आता। तो इसीलिए पॉलिटिकल अगर ये पाकिस्तान में मेरा ख्याल सूट नहीं करता, पाकिस्तान में अगर एक क्रिकेटर हो अच्छी रिप्यूट वाला होना चाहिए, क्रिकेटर हो लेकिन अच्छी रिप्यूट वाला हो तो बिल्कुल उनको लीड करना चाहिए और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए जरूरी है। देखे ना आप उन लड़कों को जो परफॉर्म कर रहे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में एक नाम बनाया हुआ है, उन्हें ले जाकर आप एक ऐसे बंदे के सामने बिठा दें जिसकी अपनी कोई शख्सियत नहीं है और वो उनको किसी भी तरीके से डायरेक्ट कर रहा है, कुछ भी कह रहा है, तो वो लाजमत है उस पर प्लेयर्स का मोरल डाउन होता है। आप खुद भी देख लें जिस फील्ड में आप जर्नलिज्म में काम कर रहे हैं, अगर आपके ऊपर कोई ऐसा बंदा हो जो खुद जर्नलिस्ट नहीं है, जिसे बोलना नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो आप क्या फील करेंगे, आपकी फीलिंग मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल शेक हो जाएगा। तो इसी तरीके वो जो क्रिकेटर हैं या क्रिकेट टीम है वो भी मुतासिर होती है। तो मेरे ख्याल से इनका कतई कोई ऐसा आईन में कोई ऐसी चेंज करनी चाहिए, इनका कोई किसी किस्म का ताल्लुक नहीं होना चाहिए क्रिकेट बोर्ड के साथ। लेकिन अब क्यों होता है देखिए, वो सबको पता है कि क्रिकेट में इतना पैसा आ चुका है। मैं अभी वो अपने एक पोस्ट में मैंने लिखा था कि पाकिस्तान इंडिया का सेमीफाइनल जो बातें हो रही है, चांसेस देखें तो अफगानिस्तान के भी चांसेस हैं, लेकिन जो बातें हो रही हैं और न्यूजीलैंड के भी हमसे ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन बातें हो रही है पाकिस्तान और इंडिया सेमीफाइनल की, क्योंकि पता है पैसा इसमें है, स्पॉन्सर इसकी तरफ भागेंगे, आपका जो वो ब्रॉडकास्ट राइटिंग है वो भी इसी से आएंगे, सारे स्पॉन्सरशिप इसी से आएगी। तो इसलिए जो सियासी पार्टी है ना, इनकी नजर उस पैसे के ऊपर होती है कि हम वहां आए, हम इसे कंट्रोल करें और इस तरीके से पैसा बनाए, क्योंकि उसका कोई पूछने वाला नहीं है कहां से कितनी स्पॉन्सरशिप आई है, कितना पैसा आया है, कोई उसका हिसाब किताब नहीं करता। तो इसलिए ये सब इस पे नजर रखते हैं, इनका बिल्कुल इससे हमेशा के लिए ताल्लुक खत्म होना चाहिए।
जी बिल्कुल ठीक है, आप सही बात कह रहे हैं। तो सिर्फ रमीज ही नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि वसीम अकरम है। वसीम अकरम ने तो एक को तो पूछा जिस वक्त एक दफा जर्नलिस्टों ने कि भाई आप क्यों नहीं क्रिकेट बोर्ड को ज्वाइन करते हैं, वो कहते हैं जी मैं उनके जाके तरले मिनते तो नहीं कर सकता ना, आई एम देयर दे कैन कॉल मी राइट। तो वही बात है,
वसीम का प्रॉब्लम ये, देखिए वसीम का माजी क्लीन नहीं है। वसीम का आपको पता है कि जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसमें जो रिपोर्ट जारी की थी जस्टिस कयूम ने, उसमें वसीम अकरम का नाम है। तो जब तक आप क्लीन प्लेयर्स नहीं लाएंगे ना, तब तक आप, क्योंकि रमीज के ऊपर किसी किस्म का एलिगेशन नहीं था। रमीज का मतलब जो कम्युनिकेशन है, रमीज पढ़ा लिखा बंदा है, एमबीए किया हुआ उसने पाकिस्तान टीम में, या इमरान खान एजुकेटेड था या रमीज राजा था, और उसने पूरी जिंदगी क्रिकेट में गुजारी है, खेलते गुजारी है, कम्युनिटी करते गुजारी है, वो एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी है जो बात कर सकता है। उसे आप किसी भी जगह ले जाकर बिठा दे वो बात कर सकता है। वसीम अकरम बात जरूर कर सकता है, लेकिन वसीम अकरम की तालीम नहीं है, वसीम अकरम का माजी क्लीन नहीं है, तो इसलिए मैं वसीम के इतना हक में नहीं हूँ।
जहीर अब्बास के बारे में क्या बात करते हैं, जहीर के बाद जहीर अब्बास
नहीं, ये लोग हैं लेकिन ये बहुत पुराने हो चुके हैं। देखिए ना, अब आप उस दौर की क्रिकेट नहीं हो रही, अब आपको वो बंदा लाना है जिसे इस दौर की क्रिकेट का पता।
ठीक है ठीक है, ऑल राइट ओके कैसर, थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। नेक्स्ट वीक हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे, बट दैट्स ऑल द टाइम दैट वी हैव दिस वीक। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय।
थैंक यू सो मच।
और इसके साथ ही बस वक्त हुआ है आपसे जाने का।
हाँ, दो दिन मैंने आपसे बिल्कुल मुलाकात नहीं करनी भाई, बस छुट्टी दे मुझे दो दिन, ठीक है जी।
दिन तक अब मेरी आपकी कटी।
हाँ कटी, इंशाल्लाह आई विल सी यू ऑन मंडे।
हाँ, एक कलाम के साथ आप छोड़े जाते हैं, बाकिया की बातें मंडे को। हैव अ वंडरफुल वीकेंड।
सदा दूर रखना परेशानियां हमको घेरे हुए हैं, परेशानियां हमको घेरे हुए हैं, परेशानियों से पना मांगता हूँ, करम ये दामन हमारा मुरादों से भर दे, ये दामन हमारा मुरादों से भर दे, मैं सबके लिए ये दुआ
WTOR, Youngstown, Toronto, now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Birosh Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kHz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world in words and in music.
आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो 770 AM। हमारे प्रोग्राम को टोरंटो में सुनने के लिए डायल कीजिए 647-872-4900, मॉन्ट्रियल 514-907-6288। इसके अलावा कैलगरी, वैंकूवर, एडमिंटन और रिजाइना के नंबर्स आप eawaz.com की वेबसाइट पर जाके हासिल कर सकते हैं। हमारी लाइव 24 घंटे की नशियात के लिए विजिट कीजिए eawaz.com। लाइक करें फेसबुक पेज eawaz, डाउनलोड करें फ्री eawaz ऑफिशियल ऐप। Radio 770 AM, Voice of Community. For more details, visit eawaz.com.
Vaste jaan bhi do main gawa है इश्क मेरा तू बेशक है तुझ पे ही तो मेरा हक है साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा तेरे नाल तकदीरा लिखवाऊंगा मैं तेरा बन जाऊंगा मैं तेरा बन जाऊंगा सौ तेरी मैं कसम यही खाऊंगा किते वादे आनू मरा निभाऊंगा तुझे हर बारी अपना बनाऊंगा मैं तेरा बन जाऊंगा मैं तेरा बन जाऊंगा
summer